दिन भर 4 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहली बार चरमपंथी संगठन लश्कर और जैश के नाम हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
आई एम हैप्पी टू नो दैट चाइना हैज टेकन फॉरवर्ड द पीपल टू पीपल थ्रस्ट ऑफ आवर हैंडशेक फ्रॉम लास्ट ईयर।
बताएंगे कैसे गांव की कहानी जो नदी के कटाव के कारण कभी नेपाल में रहा तो कभी भारत में।
आज जो हमारा बिहार की जमीन है, नेपाल वाला तो अपना बांधा लगा लिया है, अब बिहार वाला के कोई सुनवाई नहीं है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार चरमपंथी संगठनों के नामों की सूची रखी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव प्रीति सरन ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बाकी सदस्य देशों ने भी आतंकवाद की निंदा की और इसके खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया। प्रीति सरन के मुताबिक ब्रिक्स में पहली बार हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे चरमपंथी संगठनों का नाम सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर कोरिया की ओर से किए गए हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है। ये सिस्टम अमेरिका में तैयार हुआ है। दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया एक और मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी में है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने संसद में बताया कि उन्हें लगता है कि उत्तर कोरिया ने इतना छोटा परमाणु हथियार तैयार कर लिया है जिससे बैलिस्टिक मिसाइल पर लोड किया जा सकता है। एशिया के मुस्लिम देशों ने म्यांमार की सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य अभियान बंद करने की अपील की है। पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने कहा है कि इस संकट का जल्द समाधान तलाशना चाहिए। नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आन सान सूची से दखल की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि बीते 10 दिन के दौरान करीब 90,000 रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से बांग्लादेश जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों से जुड़ी एजेंसी का कहना है कि शरणार्थियों के मुख्य कैंप में क्षमता से ज्यादा लोग आ चुके हैं। एजेंसी के प्रवक्ता विवियन टेन ने बीबीसी को बताया, शरणार्थियों के आने की शुरुआत अगस्त के आखिर में हुई। हजारों की संख्या में लोग यहां आ चुके हैं। कुटुपा लॉन्ग कैंप में 13,000 शरणार्थी थे। अगस्त से यहां कुल 21,500 लोग और आ चुके हैं। ये संख्या मूल संख्या से भी ज्यादा है। ये कैंप पूरी तरह भर चुका है। अब यहां जरा भी जगह नहीं है। ये थे विवियन टेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि बुरुंडी में मानवाधिकार उल्लंघन के पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेना की ओर से लोगों को मारे जाने, उनके टॉर्चर और रेप के बारे में ब्यौरा मिला है। बुरुंडी में संयुक्त राष्ट्र के जांच कमीशन के एक सदस्य एफ हैम्सन ने कहा,
Nous demandons à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur les crimes commis au Burundi.
हमारी मांग है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच शुरू करनी चाहिए। हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अपील करते हैं कि ऐसे अपराधों के दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए। ये थे एफ हैम्सन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया की सेना ने डेर अल जोर के करीब स्थित उस इलाके के पास पहुंच गई है जहां लंबे वक्त से इस्लामिक स्टेट ने नाकेबंदी की हुई है। सीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक सरकारी सेना नाकेबंदी खत्म करने के करीब है। डेर अल जोर का बड़ा हिस्सा इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। सीरिया में रक्का के बाद इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाला ये सबसे बड़ा शहरी इलाका है। लेबनान के पर्यावरण मंत्री तारेक खातिब ने शिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने शिकार किए पक्षी की तस्वीर ऑनलाइन डाली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर 6,000 से ज़्यादा लोगों को शिकार की अनुमति दी गई है। सरकार की नई नीति के मुताबिक वन्य जीवों को बचाने के लिए अनियंत्रित और अवैध शिकार पर रोक लगाई गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। ब्रिक्स देशों ने आज तालिबान, अलकायदा और पाकिस्तान में आधारित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा पर गंभीर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही इन देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने सभी देशों से अपील की है कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रुख अपनाएं। आतंकवाद से निपटने के क्रम में चरमपंथ से निपटने और आतंकियों के वित्त पोषण के स्रोतों को अवरुद्ध करने की भी बात की गई। मैंने बीजिंग फोन कर वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से संपर्क किया और पूछा कि ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत के रुख को कितनी जगह मिली है।
ये जो डिक्लेरेशन हुआ है ये पांचों देशों ने साइन किया है और भारत के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि चीन ने पूरा बहुत ही डिटेल चर्चा करने के बाद चीन इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये चीन के पूरी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहली बात, इन दोनों कट्टरवादी जूथों को चीन ने खुल के सपोर्ट किया था, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस में भारत जाने की कोशिश कर रही थी इनके विरुद्ध में सेंसर लाने के लिए, चीन टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठा करके इस पर चर्चा करना बाकी है, इस तरह से 3 साल तक रोकती रही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और मोदी साहब के लिए जीत कही जा सकती है।
और इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन में और किसकी चर्चा है?
ज्वाइंट डिक्लेरेशन में एक बात की चर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, वो यह है कि बेल्ट एंड रोड जो बार बार वो दोहराते हैं हर इवेंट में, इस बार उसकी चर्चा नहीं है, इसलिए कि भारत को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, रशिया को रुचि नहीं है। तो जबरदस्ती थोपने का जो काम था जिससे भारत को भी ऑब्जेक्शन था, वो नहीं किया गया है इस बार। डिक्लेरेशन का कि कई पहलू है, टेक्नोलॉजी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, कई पहलू है, लेकिन टेररिज्म का जो पहलू है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक गिव एंड टेक वाली बात आई है कि चीन को जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान टेररिस्ट से डर है, और उसमें से कुछ तो तुर्कमेनिस्तान से आते हैं और कुछ पाकिस्तान से आते हैं, तो काउंटर टेररिज्म बहुत ही बड़ा विषय था जिसमें भारत और चीन में मतभेद थे, तो कम से कम एक दिशा में मतभेद कम हुआ है ये साफ है, और कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ उसकी अपनी जो दोस्ती है उसमें अब चीन इस तरह से सोचेगी कि जो गलत है सो गलत है, चाहे दोस्त क्यों ना हो। तो ये थोड़ा सा एक परिवर्तन नजर आ रहा है। दूसरा ये कि सवाल ये है कि ये क्यों हुआ, चीन ने क्यों अपना पूरा रवैया में परिवर्तन किया, उसको देखिए कई बातें सामने आई है। एक तो दुकलाम का विषय है कि जहां 3 साल पहले जापान ने चीन को चैलेंज किया था, उसके बाद किसी ने कभी हिम्मत नहीं की, और दुकलाम के विषय में ये देखा गया कि भारत चीन को चैलेंज कर सकती है, तो उससे थोड़ा सा तो चीन पर असर आया है। दूसरा ये कि नॉर्थ कोरिया का झमेला सर पे मंडरा रहा है, अमेरिका उस पर कुछ न कुछ अटैक करने की बात कर रही है, ऐसे परिस्थिति में चीन को दोस्त चाहिए, चीन को 10 जगह दुश्मन नहीं चाहिए, इसलिए कुछ कंसेशन तो देने पड़ते हैं, और ये एक कंसेशन है जिसको देने से मोदी साहब का जो स्टेचर है भारत में वो बहुत बढ़ जाएगा, ये सोच के शायद चीन मान गई है।
अच्छा, ये बताइए नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहा है, चीनी मीडिया में क्या चर्चा है मोदी के बारे में?
देखिए शुरुआत में तो चीनी मीडिया ये कहती रही कि वो डायनामिक लीडर है, लेकिन जब झगड़े शुरू हो गए और बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ तो ये कहने लगे कि वो अपना उसके अंदर अपना हीरोइज्म या अपना रुतबा बढ़ाने के लिए दुश्मनी मोड़ लेने वाला आदमी है जो हर आदमी से लड़ता है। ये है सरकारी कंट्रोल्ड मीडिया। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, उसमें मोदी जी के जो अकाउंट सोशल मीडिया में, नरेंद्र मोदी का यहाँ एक अकाउंट है, वहाँ जितने सपोर्टर्स है उसमें बिल्कुल कमी नहीं हुई, और सोशल मीडिया में जो जवान लोग है, जो यंग लोग है, उन्होंने इतना खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया। ये एक दो अलग अलग पहलू है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मीडिया है वो क्रिटिसाइज करता है, आम जो लोग हैं वो नहीं करते।
अच्छा, ये बताएं नरेंद्र मोदी के अब अगले एंगेजमेंट्स क्या हैं आने वाले दिन में?
बड़ा सवाल ये है कि कल नरेंद्र मोदी का जो आखिरी दिन है, तब क्या वो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जो मिलना न मिलना पर निर्भर करता है कितना संबंध आगे बढ़ा है। आज जो टेरर वाला डिक्लेरेशन हुआ, इससे साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की कल मुलाकात होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कोई निंदाजनक या क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं लाए, उससे ये लगता है कि दोनों देशों में कोई तालमेल बन रही है।
ये थे बीजिंग से सैबल दास गुप्ता। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया द्वारा किए गए हाइड्रोजन बम परीक्षण पर गहरी चिंता प्रकट की है और इसके जवाब में बेहतर रक्षण प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ कुलदीप मिश्र।
उत्तर कोरिया ने अपना छठा परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद से कोरियाई प्रायद्वीप और अमरीका में तनाव बढ़ गया है और युद्ध का डर मंडराने लगा है। उत्तर कोरिया के जवाब में उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया ने युद्ध का अभ्यास किया। उन्होंने लड़ाकू विमानों से रॉकेट दागे, जमीन से मिसाइलें छोड़ी और उत्तर कोरिया के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा है कि उत्तर की मिसाइलों को रोकने के लिए जो अमरीकी मिसाइल रक्षा सिस्टम उनके यहाँ लगा है उसे और मजबूत किया जाना है, क्योंकि उत्तर कोरिया आगे और मिसाइल परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया के उप रक्षा मंत्री ने इस संभावित परीक्षण का कोई समय तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह 9 सितंबर के आसपास हो सकता है, क्योंकि उस दिन उत्तर कोरिया का 69वां स्थापना दिवस है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जांग क्यूंग सू ने कहा,
हमारा अनुमान है कि उत्तर कोरिया एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास अमेरिका तक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। अमेरिका के सहयोग से हम सामरिक सैन्य हथियार और बम वर्षक तैनात कर रहे हैं।
दक्षिण कोरियाई अधिकारी जांग क्यूंग सू के शब्द। इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि उसे या उसके सहयोगियों के लिए होने वाले किसी भी खतरे का बड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बाकी विकल्पों के अलावा उत्तर कोरिया से व्यापार करने वाले देशों के साथ अपना व्यापार रोकने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि संवाददाताओं का कहना है कि अमेरिका के इस प्रस्ताव को चीन और रूस का समर्थन मिलने के आसार नहीं है। उत्तर कोरिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चीन से ही होता है और हाल के दिनों में चीन ने भी उत्तर कोरिया की संभली जुबान में आलोचना की है, लेकिन अब जब तनाव बढ़ा है तो चीन की भूमिका पर सबकी नजरें हैं। अमेरिका के पूर्वी एशियाई मामलों के सहायक सचिव रहे डैनी रसल कहते हैं,
बीजिंग्स प्रायोरिटी फॉर द कोरियन पेनिनसुला हैजंट चेंज्ड।
कोरियाई प्रायद्वीप के लिए बीजिंग की प्राथमिकता नहीं बदली है। इसका मतलब है कि चीन अब हर कीमत पर युद्ध या कोलाहल को टालने की कोशिश करेगा। अगर वास्तव में यही चीन की प्राथमिकता है तो हम उसके संदेशों में दोनों तरफ को दोष देने वाला और उत्तर कोरिया को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करने वाले सुझाव वाला उसका रवैया देख सकते हैं।
ये थे अमेरिका के पूर्वी एशियाई मामलों के सहायक सचिव रहे डैनी रसेल। जापान ने भी रूस और चीन की ओर से समर्थन की आस जताई है। जापानी सरकार के प्रवक्ता योशिहिदे सुगा ने कहा,
हम उत्तर कोरिया की गतिविधियों को रोकने के लिए रूस और चीन से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जिनके पास उत्तर कोरिया को प्रभावित करने की ताकत है।
ये थे जापानी सरकार के प्रवक्ता योशिहिदे सुगा के शब्द। उत्तर कोरिया के ताजा परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी होने वाली है। दक्षिण कोरिया और जापान भी उत्तर कोरिया के खिलाफ और ज्यादा पाबंदियां लगाने का दबाव बनाने के लिए सहमत हुए हैं। कुलदीप मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर कोरिया के परमाणु बम परीक्षण पर दक्षिण कोरिया और जापान की चिंता।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब कुछ खबरें लेते हैं भारत से। गोरखपुर के बाद फरुखाबाद में भी कई बच्चों के मरने का मामला सामने आया है। ऑक्सीजन न मिलने से 49 बच्चों की मौत छिपाए जाने के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए फरुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार, सीएमओ उमाकांत पांडे और सीएमएस डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल को हटा दिया है। इस समय हमारे साथी रोहित घोष फरुखाबाद में हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं। बताइए रोहित, क्या है पूरा मामला?
उसमें देखिए ऐसा है कि ये 49 बच्चों की मौत हो गई थी और फिर से वो ब्लेम गेम जिसे कहते हैं वो शुरू हो गया है। ये सरकार का कहना है कि ये मौतें जो हुई है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। और उधर जो है ये डीएम जो थे उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट दोनों को जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो उसके खिलाफ जो है ये बाकी जो डॉक्टर थे उनमें अब रोष है और उन्होंने काम बंद कर दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो और वो आज जो है उन्होंने एक भी मरीज नहीं देखा और पूरी तरह से अस्पताल में जो है अफरा तफरी का माहौल है आज, और यही स्थिति जो है ये कल भी बनी रहने वाली है।
ये बताइए, ये जो पूरी जिन मौतों की बात की जा रही है ये कितने समय काल में ये मौतें हुई हैं?
ये देखिए, ये जुलाई से लेके अगस्त तक का है, ये 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक के मामले हैं ये।
और सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं लोगों को सस्पेंड करने के, इस पर क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं?
देखिए, लोगों में गुस्सा तो बहुत ज्यादा है कि इस तरह से बच्चे मर रहे हैं, और लेकिन सरकार का जो कहना है कि इसमें जांच करवाई जाएगी और FIR मतलब जो FIR लिखवाई गई है उसके अनुसार जो है वो मतलब काम नहीं करेंगे, वो अपनी जांच अलग करवाएंगे।
और ये जो बात है ऑक्सीजन की कमी की, क्या ये सिद्ध हो पाई है या सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है?
नहीं, अभी तक तो देखिए सिद्ध नहीं हो पाई है, ये जांच का विषय तो है, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो वही एक कारण समझ में आ रहा है जो अचानक इतने बच्चों की मौत हो गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहित घोष आपका, आप इस पर नजर रखे रहिएगा, हो सकता है नमस्कार भारत में आपसे विस्तृत चर्चा हो इस पूरे प्रकरण पर। ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने दो चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। कैसे इन चरमपंथियों को मारा गया, सुनिए माजिद जहांगीर की श्रीनगर से भेजी इस रिपोर्ट में।
उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके के शंकरगुण गांव में सोमवार को सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो चरमपंथी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में चरमपंथियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा था। इलाके को घेरने के बाद चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ के दौरान दो स्थानीय चरमपंथी मारे गए हैं। कश्मीर जोन के IGP मुनीर अहमद खान ने BBC को जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए चरमपंथी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़े हुए थे। पुलिस ने मारे गए चरमपंथियों की पहचान नईम अहमद और परवेज खोरवारा के तौर पर की है और साथ ही मारे गए चरमपंथियों से हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। बीते दो महीनों में दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन क्लीन में अभी तक चरमपंथियों के कई बड़े कमांडर और उनके साथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तहम इन मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस और सेना ने बीते दिनों कई बार बताया है कि चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी रहेंगे। मुठभेड़ स्थलों पर सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों के प्रदर्शनों और पत्थरबाजी का बीते एक साल से सामना रहा है, जिस दौरान सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों के बीच हुई झड़पों में अभी तक कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और अब कहानी उस गांव की जो एक नदी के कटाव के कारण कभी नेपाल के हिस्से में रहा तो कभी भारत के। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है सिवाय सुस्ता और काला पानी के। सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी कहा था कि नेपाल से हमारी सीमा के 98% मामलों का समाधान निकाला जा चुका है, लेकिन 2% जगहों पर अपने अपने दावे हैं। इन्हीं में से एक है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी से सटा गांव सुस्ता। जंगलों के बीच इस गांव में बाहरी लोगों का पहुंचना भी आसान नहीं। वहीं से ये रिपोर्ट भेजी है हमारे साथी रवि प्रकाश ने।
जब हम वाल्मीकि नगर से सुस्ता के लिए चले तो सड़क एकदम ठीक थी। चकदहुआ के SSP पोस्ट आते आते सड़क गायब ही हो गई। वहां तैनात भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने हमारी गाड़ी वहीं रोक ली और कहा आगे मत जाइए। कुछ देर की बातचीत के बाद उन लोगों ने हमें आगे जाने का रास्ता दिखाया। वह कच्ची सड़क थी, बाढ़ के कारण बुरी तरह टूटी हुई। दोनों तरफ घने जंगल थे, दिन ही में अंधेरे का आलम। इस कदर अंधेरा कि बारिश की बूंदे और हवा की सरसराहट भी कुछ पल के लिए डरा दे। इस सड़क पर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम चकदहुआ गांव पहुंचे। यह भारत की सीमा पर बसा अंतिम गांव है। यहां मेरी मुलाकात हुई भूटन राम से। उन्होंने मुझे बताया कि सुस्ता पर नेपाल ने जबरन कब्जा कर रखा है। भूटन राम ने BBC से कहा,
ये साल अभी कट गया है, कम से कम मैंने 1
किलो के आधा किलोमीटर इधर कटा है इस पीरियड में। अभी चल के आप लोग इंक्वायरी करिए। हमार जमीन कटल बा सर 18 कट्ठा, आ जो हमारा बिहार के जमीन है नेपाल वाला तो अपना बांधा लगा लिया है, आ बिहार वाला के कोई सुनवाई नहीं है।
ये सुस्ता जाना था सो मेरे अनुरोध पर इस गांव के दशरथ कुमार भी मेरे साथ हो लिए। रास्ते में उन्होंने बताया कि सुस्ता पर विवाद की वजह है गंडक नदी। वह अपनी धार बदलने के साथ साथ विवादों को उकसाती रही है। मार्च 1816 में भारत की तत्कालीन अंग्रेजी सरकार और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के मुताबिक गंडक नदी के बीच धार को ही भारत और नेपाल की सीमा माना गया था। तब यह तय हुआ कि गंडक नदी के दाहिने तरफ की जमीन नेपाल की होगी और बाईं तरफ का हिस्सा भारत का। पहले सुस्ता गंडक नदी के दाहिने तरफ था, लेकिन लगातार कटाव के कारण अब यह बस्ती नदी की बाईं तरफ है, लिहाजा भारत इस पर अपना दावा करता है। लेकिन सुस्ता में रहने वाले लोग इसे नेपाल के नवलपरासी जिले का हिस्सा बताते हैं। सुस्ता की लैला बेगम ने बीबीसी से कहा,
ऐसा है कि ये सुस्ता लगभग 20 साल से यहाँ सैनिक बने, यहाँ भूतपूर्व सैनिक बसा लग गया, यहाँ लोग रह रहे हैं। हर साल के साल कटता था, कट गया है बहुत जमीन। अब यहाँ जब हम लोग रह रहे हैं तो जमीन वो सब इंडिया कब्जा में है।
सुस्ता में रहने वाले सुरेंद्र कुर्मी को नेपाल की नागरिकता मिली हुई है, लेकिन उनके मुताबिक यह दोयम दर्जे की नागरिकता है। उन्हें वे सारे लाभ आसानी से नहीं मिल पाते जो उच्च श्रेणी की नेपाली नागरिकता वाले लोगों को मिलते हैं। उन्होंने बताया कि सुस्ता के सभी लोगों को नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल भी नहीं सका है। कुछ लोगों के पास भारत की नागरिकता है तो कुछ लोग दोनों ही देशों की नागरिकता का प्रमाण पत्र लेकर यहाँ बैठे हैं।
बाजार करने के लिए हम लोग भेड़िहारी चौराहा में जाते हैं बिहार में। नेपाल में जाने के लिए पूरा दिन लगता है, बिहार में जाने के लिए यहाँ तो पास ही। नागरिकता नेपाली बना है अभी, ये पहले का नहीं है, मोबादी जीता था तभी ये बना, हम लोग का ये अंकित बना है, वो भी अच्छा वाला नहीं है।
350 घरों वाले सुस्ता की आबादी 4000 से भी अधिक है। पहले यहाँ जंगल था, बाद में नेपाल सरकार ने इस इलाके में पूर्व सैनिकों को बसाया। साल 1962 में यहाँ भीषण बाढ़ आई, तब सब कुछ तबाह हो गया। इसके बाद अधिकतर भूतपूर्व सैनिक गांव छोड़कर चले गए। तब इस जमीन पर दूसरे गाँव के लोग आकर बसे, इनमें अधिकतर भारत से आए लोग थे। जब मैंने भारत और नेपाल दोनों ही देशों के सक्षम अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात करनी चाही तो उन लोगों ने किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि भारत और नेपाल इस विवाद का शीघ्र समाधान कर लेंगे। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए सुस्ता में।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और मेरे साथ आज बहुत दिनों बाद हैं
वंदना। आपने बुलाया ही नहीं इतने दिनों से।
वंदना आज अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके चिट्ठियां प्रस्तुत करने आई हैं। जी, कहां से शुरू कर रही हैं?
तो ये जो है पोस्ट कार्ड है जो मुझे बहुत प्रिय है, ये भेजा है विष्णु वर्मा जी ने ग्राम ककोली फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। और ये लिखते हैं कि जो भारत पाक विभाजन पर जो एक सिलसिला था रिपोर्टों का, कार्यक्रमों का बीबीसी हिंदी रेडियो पर, वो इन्हें बहुत ही पसंद आया। चाहे वो जो कवि शामिल किए गए जिसमें कार्यक्रम को आपने संचालन किया, उसका भी इन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत बधाई जो सारे प्रस्तुत करता है। ये एकता है, सौहार्द है, तभी कायम रह सकता है जब भावनाओं को भड़काने वाले ना भड़का पाए,
उनको ये मौका ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत और पाकिस्तान के कवियों को और छात्रों को एकजुट करके सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की और एक तरह का जो यथार्थ है उसको सामने रखने की कोशिश की। आपको ये कोशिश पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरा जो पोस्ट कार्ड है वो हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी,
उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल, ये पोस्ट कार्ड लिखते हैं और इनके एक नहीं तीन तीन पोस्ट कार्ड एक साथ मिलते हैं।
तो अगर मैं संक्षेप में बता पाऊँ तो एक तो इन्होंने एक लंबी फहरिस्त है कि इनको सलीम रिजवी, नीरज सहाय, मधुसूदन आनंद का विश्लेषण
पसंद आया है
और खासकर खेल समाचार जो आदेश कुमार गुप्त जो सुनाते हैं। और दूसरी जो इन्होंने बात लिखी है कि निखिल रंजन क्या गए बीबीसी से, आपने तो दुनिया जहान कार्यक्रम ही बंद कर दिया।
नहीं, दुनिया जहान कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, ये आपसे बार बार कहा गया है इसी मंच पे। यानी एक समय आएगा जब दुनिया जहान कार्यक्रम हम फिर से शुरू करने की स्थिति में होंगे,
शायद कुछ और बेहतर बदलाव के साथ। नीला लिफाफा है वो है लक्ष्मण दास शर्मा मंडलाना नारनौल से,
नारनौल हरियाणा से भेजा है
जी। और इन्होंने कहा है कि इन्हें विवेचना बहुत पसंद आई जो बंसीलाल पर दी गई थी। पूछ रहे हैं कहां से रेहान फजल इतनी सारी जानकारी जुटा कर लाते हैं।
वो खूबी है रेहान फजल की, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के नेता बंसीलाल जो थे उनके बहुत सारे आलोचक भी थे लेकिन बहुत सारे प्रशंसक भी उनके थे और रहे हैं। रेहान फजल ने 12 मिनट की विवेचना में उन सबको समेटने की कोशिश की। आपको ये प्रयास भी पसंद आया, हम सिर्फ आपसे धन्यवाद कहेंगे
जी। ये जो ईमेल है ये आंध्र प्रदेश से आया है, सत्य कमलाकर वज्जल, ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से।
जी हाँ बिल्कुल, श्रीकाकुलम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि जब नक्सलवादी आंदोलन हुआ था तो श्रीकाकुलम उसका एक बहुत बड़ा केंद्र था उस जमाने में 1967 से 70 के दौरान।
ये अतिरिक्त जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली
है। वहाँ से चिट्ठी आई है, क्या कहते हैं हमारे श्रोता?
ये इन्होंने कहा है खास तौर पर कि जो शनिवार को इंडिया बोल कार्यक्रम था उसमें अधिक से अधिक श्रोताओं को लेने की हड़बड़ी में किसी भी श्रोता को जो शामिल हुए समुचित समय नहीं दिया गया।
जी आपकी बात बिल्कुल सही है वज्जल साहब, कई बार बहुत पेचीदा जो मुद्दे होते हैं उनको समझाने में इतना समय लग जाता है कि श्रोता अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो आपकी ये राय मैं वात्सल्य तक पहुंचा दूंगा और अगली बार से कोशिश ये होगी कि श्रोताओं की शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा हो।
ये दो ईमेल हैं, गणेश प्रसाद हुजदर और मंत्र मुदित, ये दोनों हैं संग संग गुनगुनाओ जो साप्ताहिक कार्यक्रम है। एसएन त्रिपाठी जो संगीतकार हैं उनको लेके इन्होंने काफी तारीफ की है। एक और ईमेल है रऊफ सिद्दीक साहब का, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज।
जी कहाँ से लिखते हैं
ये? देहरादून।
अच्छा क्या लिखा है?
इन्होंने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है, रियाज मसरूर की जो एक तरह से फेसबुक और रिपोर्ट कही है, जो वहाँ गुमशुदा लोग हैं उनकी जो संघर्ष है उस पे इन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन लगी, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। और बीबीसी हिंदी और बीबीसी उर्दू का जो संयुक्त कार्यक्रम था बच्चों
जिसका
के साथ
भी जिक्र किया हमने
जी, वो भी इन्हें पसंद आया। और फिर जाहिर है राजेश जोशी सर सरहद पार से वसतुल्ला सर के साथ जो कार्यक्रम उन्होंने दिया वो भी इन्हें बहुत ही अच्छा लगा।
रऊफ सिद्दीक साहब आप देहरादून से लिख रहे हैं और आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुनते हैं, आप ही की हौसला अफजाई वो कारण है जिसकी वजह से हम अपना काम दुरुस्त ढंग से करने की कोशिश करते हैं और शायद कामयाब भी होते हैं।
एक ईमेल और लेना चाहूंगी
जी, बिल्कुल।
ये है नॉर्थ कैरोलिना अमरीका से।
अच्छा बहुत दूर से
जी, लिखने वालों हो सकता है मैं अगर उच्चारण गलत हो, र्यूबिन क्रिस्टी लिखते हैं कि मैं बहुत सालों से बीबीसी सुनता रहा हूं और पहली बार खत लिख रहा हूं, मेरी पत्नी और मैं अमेरिका में बीबीसी हिंदी इंटरनेट पर सुनते हैं।
अब देखिए तो बहुत हमारी दिलचस्पी जग गई है र्यूबिन क्रिस्टी साहब, आपका ईमेल हिंदी में आया है और अमेरिका से आया है, अपने बारे में थोड़ा और बताएंगे अगली चिट्ठी में तो हमें और खुशी होगी। थोड़ा ये बताइए कि आपका बीबीसी से कितना पुराना संबंध है, आप वहाँ क्या करते हैं, तो हम उसे जानने में बड़ी हमारी दिलचस्पी है। मुझे लगता है अब समय बहुत कम बचा है तो आपके पास तो चिट्ठियों का अंबार है, लेकिन अब मैं क्षमा चाहता हूँ अपने श्रोताओं से, चलते चलते पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और खेल समाचारों में बहुत तेजी से आपको ये बता दें कि मारिया शारापोवा चौथे राउंड में हार गई हैं, उनको सेवा सोवार ने हराया 7-5 से। उन्होंने पहला सेट जरूर जीता लेकिन अगले दो सेट 6-4 6-2 से हार गई। और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। चीन में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार चरमपंथी संगठनों के नामों की सूची रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और बाकी सदस्य देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया। उत्तर कोरिया की ओर से किए गए हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है। एशिया के मुस्लिम देशों ने म्यांमार सरकार की से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य अभियान बंद करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि बीते 10 दिन के दौरान करीब 90,000 रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से बांग्लादेश जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि बुरुंडी में मानवाधिकार उल्लंघन के पुख्ता सबूत मिले हैं। सीरिया की सेना डेर अलजोर के करीब स्थित उस इलाके के पास पहुंच गई है जहां लंबे वक्त से इस्लामिक स्टेट ने नाकेबंदी की हुई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।